बहुत आने वाले हैं, नीचे से भी काफी आएंगे। बिंदु बनकर बैठो, ओम शांति भवन का तो बहुत सुख लिया, अब मेडिटेशन हॉल का भी सुख लो। यहाँ पर भी हम अव्यक्त बाप दादा से मिलते थे, बहुत प्यार से मिलते थे, सब इतना अपने आप को नजदीक बाप दादा के अनुभव करते थे। हाँ थोड़ा इस तरफ हो जाओ, और भी आ जाए भाई, और भी आ जाए, और भी आ जाए, इतनी जवान में देख रही हूँ, बैठ सकते हैं नीचे ताकि बुजुर्गों को ऊपर स्थान मिले। जवान नीचे बैठे, आज तो गुजरात का टर्न है बाबा मिलन के लिए, तो गुजरात के भाई बहने तो दौड़े दौड़े ऊपर आते हैं। जो गुजरात से आए हैं सवेरे सवेरे या कल आए, हाथ उठाएं, देखो कितने, आधा हॉल तो वही भरा हुआ है। बहुत अच्छा, तो और बैठे, और आएंगे, और आ जाइए नीचे भाई लोग सब, और नीचे आ जाइए, और भी आ रहे हैं, सब बिंदु होके बैठे। ठंडी है ना तो मिलके बैठ सकते, हीटर बंद करें या जरूरत है? हीटर बंद कर दे, बंद कर दो भाई, हीटर बंद कर। ओम शांति। एक कहावत है, मुंडी मुंडी मते बिना, सुनी ये कहावत, मुंडी मुंडी मते बिना, माना जितनी मुंडियां हैं, जितने मनुष्य हैं, उतनी उनकी बातें हैं, सबकी मत अपनी अपनी है, और ये दुनिया में तो लागू होता ही है। कोई बात आप किसी एक से पूछो तो अपनी बात बताएगा, दूसरे से पूछो तो अपनी बात बताएगा, हर एक अपनी अपनी बात बताएगा, क्योंकि हर एक की मत अपनी अपनी है। लेकिन ये ईश्वर के लिए भी लागू होता है, क्योंकि ईश्वर के लिए भी इतनी मतें हैं दुनिया में, बात मत पूछो। हर एक के मुख से ईश्वर के बारे में अपनी मत है, लेकिन बाबा कहते हैं मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मैं अपनी अपना परिचय खुद ही देता हूं। तो भगवान का परिचय किसके पास भी नहीं है, क्योंकि हर एक ने अपनी अपनी भावना अनुसार परमात्मा का परिचय दिया है, इसलिए इतनी मतें हो गई है। लेकिन भगवान जो अपना परिचय देते हैं वो केवल इस समय ही संगम युग पर बाबा आकर देते हैं, और जब उस परिचय को हम सुनते हैं तो हम एक को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में कहेंगे ना, जो भी आपका इष्ट है उनको याद करो, अगर आप राम के भक्त है राम को याद करो, कृष्ण के भक्त है कृष्ण को याद करो, शिव के भक्त है शिव को याद करो, कोई देवी के भक्त है तो देवी को याद करो, जो आप जिसको मानते हो। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, हम कहेंगे भगवान एक ही है, वो कहते हैं सब लोग ईश्वर के हैं, और हम कहते नहीं, सब आत्मा ही है, ईश्वर तो एक है, उनका रूप भी एक ही है। तो आज बाबा ने विशेष रूप से अपना परिचय दिया है, और साथ साथ बाबा कितना मोस्ट बिलवेड है, कहा जाता है स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, मीठा, थोड़ा ज्यादा मीठा और एकदम मीठा, स्वीटेस्ट। तो स्वीट कौन, स्वीटर कौन और स्वीटेस्ट कौन, कौन कहेंगे? स्वीट है लौकिक पिता, पिता भी वर्षा देता है ना, तो वो तो स्वीट है, पिता से बहुत प्यार होता है बच्चों का, और पिता का भी बच्चों से बहुत प्यार होता है। फिर स्वीटर कौन है? टीचर। स्वीटर कौन है? वो टीचर है, क्योंकि वो पढ़ा करके इतना लायक बनाता है, नौकरी धंधे के लायक बनाता है, कमाई के लायक बनाता है, तो वो स्वीटर। पर स्वीटेस्ट कौन है? कौन है स्वीटेस्ट? हाँ, शिव बाबा। क्यों स्वीटेस्ट है सबसे शिव बाबा? क्योंकि वो हमें जो देता है विश्व की बादशाही, बाबा कहते वो तो कोई नहीं दे सकता है, भले कितना लौकिक पिता दे दे, कितना भी वर्षा दे दे, लेकिन स्वीटेस्ट जो शिव बाबा है, उन जैसा वर्षा तो कोई नहीं दे सकता है। दे सकता है विश्व की बादशाही कोई लौकिक पिता दे सकता है? हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते वो स्वीटेस्ट है। इसीलिए भक्ति मार्ग में लौकिक पिता होते हुए भी पारलौकिक को याद करते हैं। तो क्यों याद करते? क्योंकि उससे तो सबसे ज्यादा वर्षा मिलता है, तो जिससे सबसे जास्ती मिलेगा उसको ज्यादा याद करेंगे ना। इसलिए भक्ति मार्ग में भगवान को कितना याद करते हैं, लेकिन ड्रामा अनुसार भगवान आते ही केवल इस समय है, और आते ही भक्ति का फल देते हैं ज्ञान। तो आज बाबा की मुरली इन्हीं मुख्य दो बातों पर है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 28 जनवरी 2026 है। मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवेड, स्वीटेस्ट, सबसे प्यारा, मोस्ट बिलवेड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। परंतु विश्व का मालिक तो बनाते, खुशी तो दिलाते, नशा चढ़ाते, लेकिन बाबा फिर उसके लिए शर्त भी तो रखते हैं ना। क्या शर्त रखते हैं? तुम उनकी श्रीमत पर चलो, बस उनकी श्रीमत पर चलो तो तुम अवश्य ऊंचे से ऊंचे वर्षे के अधिकारी बनेंगे। तो मोस्ट बिलवेड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम उनकी श्रीमत पर चलो, बस एक ही काम बाबा देते हैं। प्रश्न है, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो मतें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? वैसे तो सारी मतें भिन्न है, अगर वो परमात्मा का परिचय जब देते हैं तो वो भिन्न भिन्न मतें क्या है ईश्वर के बारे में वही बताते हैं। लेकिन भगवान आकर क्या बताते हैं, फिर वो बताना होता है। तो बाबा ने यहाँ दो मतें बताई है जो एक दो के विपरीत, बिल्कुल विपरीत है, जो ईश्वर के बारे में सुनाते हैं। मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? उत्तर है, एक और कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति है। अर्जुन को यही साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति, इतनी तेजोमय ज्योति, इतनी तेजोमय ज्योति, जो अर्जुन ने कहा बस करो भी सहन नहीं कर सकता, तो समझते भगवान तो अखंड ज्योति है। और फिर दूसरी और कहते हैं वो तो नाम रूप से ही न्यारा है। अब ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती है, नाम रूप से न्यारा माना, न कोई नाम न रूप न गुण, इसलिए निर्गुण निराकार निरंजन आदि कहते हैं, माना नहीं है ये, लेकिन वो साकार से भेंट है, ये नहीं समझते। साकार की के भेंट में कहा जाएगा वो निराकार है निर्गुण है, क्योंकि साकार जैसे गुण नहीं है, और वो निरंजन है क्योंकि चक्र में नहीं आता, चक्र से परे है, लेकिन परमात्मा का अपना रूप तो होगा ना, अपना नाम तो होगा ना, अपने गुण तो होंगे जो मनुष्यों जैसे नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक और कहते हैं परमात्मा खंड ज्योति है और दूसरी ओर कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा है। ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती है। यथार्थ रूप से न जानने के कारण ही पतित बनते जाते हैं। क्यों पतित बनते जाते हैं? क्योंकि भगवान को यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं। तो बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाए ये जीवन तेरे तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। अब मरने और जीने की बात है, तो जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेंगे। अब एक शरीर छोड़ा तो वो बाप से तो गया ना, वो संबंध खत्म हो गया उस बाप से। फिर दूसरे शरीर में प्रवेश किया तो फिर उस बाप से संबंध हो जाता है। तो जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेंगे, दूसरा जन्म लेंगे तो वहां भी तो बाप दूसरा मिलेगा, पहला बाप पूरा हुआ तो बाप के पास जन्म लेंगे। तो कहने में तो यही आता है कि बाप के पास जन्म लिया। अब जन्म दिया माँ ने, लेकिन नाम किसका आता है? पिता का आता है, वैसे भी ना पिता का, आजकल तो माँ का भी नाम लेते हैं। तो बाप के पास जन्म लिया, माँ का नाम नहीं लेंगे। बधाइयां तो बाप को दी जाती है माँ से ज्यादा, जिसने इतना परिश्रम सहन किया, 9 मास गर्भ में रखा, उसकी इतनी महिमा नहीं है। फिर तो बच्चा पैदा हुआ तो किसकी महिमा होती है? हा? बाप की महिमा। क्योंकि अगर बेटा हुआ तो समझेंगे वारिस आया है। अब बेटी हुई तो पहले जमाने में तो कहते बेटी हुई ये तो बोझ बन जाएगी, ऐसे ही समझते थे। आजकल नहीं, अंतर पड़ गया। तो बधाइयां बाप को दी जाती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा ही हैं, ना बेटा है ना बेटी है, हम आत्मा ही हैं। वो हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जन्म लेते हैं। तो तुमने कितने बाप पाए? कितने बाप मिले हमें? 84 बाप मिले। वो एक बाप तो अभी मिला, लेकिन लौकिक बाप कितने मिले? 84 मिले। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा ही हैं। अब वो शरीर की बात, एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जन्म लेते हैं। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप लिए हैं। याद आता है कौन से बाप लिए? वास्तव में असुल तो निराकार बाप के बच्चे हैं ना। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, तो रहने वाले भी वहां के हो, जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहते हैं। असुल तुम वहां के रहने वाले हो, बाप भी वहां रहते हैं। यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सचमुच भूल जाते हैं ना, लौकिक बाप मिला तो पारलौकिक बाप सत्युग में थोड़ी याद होगा, शिव बाबा का याद होगा, लौकिक बाप ही याद होगा। तो बाबा कहते हैं सत्युग में यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सत्युग में भी तुम सुखी बच जाते हो तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। मुख से उस बाप का कोई सिमरण भी नहीं करते हो। हे भगवान, ओ गॉड, ये कोई नहीं कहता। सत्युग त्रेता में भगवान को कोई याद नहीं करता। सुख में उस बाप का कोई सिमरण नहीं करते, दुख में याद करते हैं। और याद भी कौन करता है? शरीर थोड़ी याद करता है, कौन याद करता है? आत्मा। और याद भी आत्मा करती है। जब लौकिक बाप को याद करते हैं, अब अंतर कितना हुआ, जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है। और ये बाबा उनको याद करेंगे, ये बाबा है जो शिव बाबा है, अगर उनको हम याद करेंगे तो कहेंगे अभी तुम क्या कहेंगे उस बाबा को, ओ बाबा, अब है तो दोनों ही बाबा, लौकिक भी बाबा है और पारलौकिक भी बाबा है। राइट अक्षर बाबा ही है, पिता गॉड फादर भी बाबा कहते हैं, आगे हो गया, लेकिन सच्चा नाम तो बाबा है। तो सब बाबा सीख गए, हमारे डबल विदेशी भी बाबा 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 कहते हैं। हाँ, एक भाई ने कहा कि मैं जब यहाँ से अपने देश में गया तो मैंने कहा बाबा बाबा, तो लोगों ने कहा कि पता नहीं किसके लिए बोलता है, क्या बाबा का मतलब क्या, उनको अर्थ नहीं पता। लेकिन पर्शियन भाषा में बाबा शब्द बहुत कम कॉमन है, पिता को बाबा कहते हैं पर्शियन भाषा में। हम कहीं ट्रेन में सफर कर रहे थे, वहाँ ईरान का एक परिवार बैठा था साथ में, ईरान के, तो उनके दो बच्चे थे, तो हर वक्त के बाबा बाबा बाबा, तो मैं तो खुश हो गई सुन करके, वो मुख से बाबा बाबा कहते हैं। तो कहा ये ईरानी भाषा में बाबा ही कहते हैं पिता को, मैंने कहा अच्छा बाबा, अच्छी बात है। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम ये जानते हो, तो बाबा कहते हैं, आत्मा उस रूहानी बाप को जब याद करती है तो बुद्धि वहां चली जाती है। अब वो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम ये जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं, पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत बहुत साहूकार थे, चले जाओ 5000 साल पहले, तुम बहुत साहूकार थे, फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार, अभी तुम दुखी हुए हो। अब ड्रामा अनुसार फिर क्या होना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, सब ड्रामा अनुसार होना है। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई, तो शरीर भी सिल्वर एज में आया, फिर कॉपर एज में आया, अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है, तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते, वो काला पड़ जाता है ना, 24 कैरेट प्योर गोल्ड कहते चाहिए, तो 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं, काला पड़ जाता है। तुम भी अभी काले आयरन एजेड बन गए हो, अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं, तो फिर वो प्योर कैसे बने, कैसे पवित्र बने। आत्मा प्योर बने तब शरीर भी उनको प्योर मिले, वो कैसे होगा, कैसे होगा भाई, हाँ बाबा की याद से, पर दुनिया में किससे पूछो कैसे होगा, तो फिर क्या कहेंगे, गंगा स्नान करने जाओ, हाँ पाप धुल गए। कोई गया गंगा स्नान करने, वापस आया तो कहा मेरे सारे पाप धुल गए। अच्छा पाप धुल गए तो तुम देवता बन गए क्या, हाँ कहाँ बन गए। तो क्या गंगा स्नान करने से, नहीं, पुकारते ही है हे पतित पावन आओ, ये आत्मा कहती है ना, बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है, हे बाबा। अब देखो बाबा अक्षर कितना मीठा है, भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं, नहीं वहां भी बाबा कहते हैं, लेकिन भारत में बाबा तो कितनों को कहते हैं, जो आया हाँ बाबा, हाँ बाबा उनको कहते हैं, बुजुर्ग कोई होता उनको भी बाबा कहते हैं, बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो, तो बाप कहते हैं, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो, क्या बन गए हो, क्या हालत हो गई है। ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए, बाबा को ही याद करना चाहिए, याद भी करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई है, अब आप आकर पावन बनाओ। ड्रामा में भी ये पार्ट है, तब तो बुलाते हैं, सबको ड्रामा में पार्ट है, बुलाने का पार्ट भी ड्रामा में है, भगवान के आने का पार्ट भी ड्रामा में है, भक्ति करना भी ड्रामा में है। तो ड्रामा में भी ये पार्ट है, तब तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई बननी है, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है बिलवेड मोस्ट बाबा है, कहते भी हैं स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? तो लौकिक संबंध में पहले है फादर, लौकिक संबंध में पहले है फादर स्वीट, जो जन्म देते हैं। फिर है टीचर, वो अच्छा होता है क्योंकि उससे पढ़कर मर्तबा पाते हैं। अब नॉलेज जिसको ज्ञान कहते हैं, बाबा कहते हैं, हाँ वो कौन दे सकता है? वो भगवान देता है। लौकिक टीचर जो नॉलेज देता है वो तो सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, उससे कमाई होती है। तो ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। हाँ, कल भी बाबा ने बताया ना, एक तरफ ज्ञान और योग है, फिर दूसरी तरफ है ध्यान और योग। तो ध्यान से भी योग श्रेष्ठ है। ध्यान में जाते हैं, साक्षात्कार करते हैं, बाबा कहते हैं उसमें माया प्रवेश हो जाती है। लेकिन योग में भी कैसे माया आती है? परंतु बाबा ने कहा ध्यान की कभी इच्छा नहीं रखो। है क्या किसको इच्छा? मैं थोड़ा देखो तो सही शिव बाबा की ज्योति, स्वर्ग को देखो तो सही। जिसको इच्छा है ध्यान में जाने की, साक्षात्कार करने की, हाथ उठाओ। किसी को नहीं है सचमुच? या बाबा ने कहा इसीलिए हाथ नहीं उठाते? थोड़ी थोड़ी तो इच्छा होगी कि नहीं? होती है, होती है। देखो हाँ कर दे, ला रहे ऐसे। तो बाबा कहते हैं योग है याद। तो बेहद का बाप जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया था, उनको तुम अभी भूल गए हो। शिव बाबा कैसे आया किसको भी पता नहीं है। चित्रों में भी क्लियर दिखाया है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? बाबा ने आज आश्चर्य का, कैसे श्री कृष्ण राजयोग सिखाएगा? कैसे उसका नाम डाल दिया है? श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखलाते ही है सतयुग के लिए। राजयोग माना राजाई के लिए योग, तो वो सतयुग के लिए राजाई है। तो कौन सिखाएगा? वो तो श्री कृष्ण तो सतयुग में आने वाला है। तो बाबा कहते हैं राजयोग सिखलाते ही है सतयुग के लिए, तो जरूर संगम पर बाप ने ही सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा, शिव बाबा इन द्वारा कराते हैं। करण करावन हार है ना, करण हार भी है और करावन हार भी है, इन द्वारा कराते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो बाबा कहते हैं वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा फिर कह देते हैं। ऊंच से ऊंच तो शिव है ना, ये साकार है वो निराकार है। शिव बाबा ऊंचते वो निराकार है और ये ब्रह्मा साकार है। सृष्टि तो यहाँ ही है, इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है, वहाँ कोई चक्र नहीं है सूक्ष्म वतन में, न मूल वतन में। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्यों की रिपीट होती है। सूक्ष्म वतन में कोई चक्र आदि तो होता नहीं। गाते भी हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, वो यहाँ की बात है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर क्या? कलयुग के बाद संगम युग। बीच में जरूर संगम युग चाहिए, सतयुग आने से पहले बीच में संगम युग जरूर चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए? नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर आते हैं। ये तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है. क्या है ये? हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट. साथ में इस हाईएस्ट गॉड फादरली गवर्नमेंट के साथ कौन है? धर्मराज. वहां भी चीफ जस्टिस होता है ना, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसका निर्णय अंतिम होता है. परंतु अगर कोई और अपील करे तो फिर राष्ट्रपति, वो सबसे ऊंचा. तो बाबा कहते हैं इनके साथ फिर धर्मराज भी है. आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, कोई गुण नहीं. अब ये कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे क्या? देवताओं के आगे तो जाके कहते हैं ना. बाबा कहते हैं कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे, पर कहना चाहिए किसके आगे? देवताओं के आगे भी कहते हैं मुझ निर्गुण आने में कोई गुण नहीं, आप सर्वगुण संपन्न हो. लेकिन ये किसके आगे कहना चाहिए? देवताओं के आगे नहीं, किसके आगे कहना चाहिए? शिव बाबा के आगे कहना चाहिए. तो कहना चाहिए ये बाप को. उनको छोड़ ब्रदर्स देवताएं हैं, जो भाई है हमारे, वो आत्मा आत्मा भाई है, तो देवताएं भी तो भाई है ना. तो बाप को छोड़ भाई जो है देवताएं, उनके आगे आगे जाकर के कहते हैं. देखो भाइयों को कहते हैं भाई वर्षा देगा क्या, भाई गुण देगा क्या? कौन गुण देता है? बाप ही देता है. तो बाबा कहते हैं उनको छोड़ ब्रदर्स यानी देवताओं को आकर लगे हैं. ये देवताएं तो ब्रदर्स ठहरे ना, ब्रदर्स से तो कुछ भी मिलना नहीं है. अब भाइयों को कहेंगे तो भाई क्या देगा? पिता ही देता है. भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए, तो देवताओं की पूजा माना किसकी पूजा? भाइयों की पूजा. तो नीचे गिरते आए हैं. अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनसे हमको वर्षा मिलता है. बाप को ही नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं. कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते हैं नाम रूप से न्यारा है. जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हैं? अखंड ज्योति भी तो एक स्वरूप है ना, तो नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाप को न जानने कारण ही पतित बन पड़े हैं, तमो प्रधान भी बनना ही है. फिर जब बाप आते हैं तब आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं. आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती है, फिर यहाँ सतो रजो तमो में आकर के पाठ बजाती है. आत्मा ही बाप को याद करती है. बाप आते भी हैं ना, हाँ याद करती है आत्मा बाप को. तो बाप आते भी हैं, कहते भी हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, ये है भाग्यशाली रथ. बिगर आत्मा रथ थोड़ी होता है. अब केवल रथ हो उसमें कोई रथी न हो तो उस वो रथ किस काम का? तो इसीलिए आत्मा रथी है, तो रथी है. रथी निकल गई, रथी निकल गया तो क्या कहते हैं? अर्थी. अर्थी माना अरथी, जिस रथ में रथी नहीं है वो जैसे अर्थी हो गई. तो आत्मा है रथी, वो शरीर रूपी रथ में नहीं है तो ये शरीर क्या हो गया? अर्थी. तो बाबा कहते हैं बिगर आत्मा रथ थोड़ी होता है. अभी तुम बच्चों को समझाया है, ये है ज्ञान की वर्षा. आप सब पर बाबा की ज्ञान की वर्षा हो रही है, नॉलेज है. इससे क्या होता है? क्या होता है इस वर्षा से? पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है. गंगा जमुना तो सतयुग में भी होते हैं, सतयुग में भी यही नदियां होगी ना. गंगा जमुना तो सतयुग में भी होते हैं. कहते हैं श्री कृष्ण जमुना के कंठे पर खेलपाल करते थे. अब ऐसी कोई बातें है नहीं. अब आप श्री कृष्ण नदी के किनारे खेलपाल करेगा, फिर वो बॉल उनका जमुना में जाकर पड़ा और फिर वो कूदा और उस बॉल को निकाला, پھر وہ کالی ناگ نے کیسے اس کو ڈسا. بابا کہتے یہ سب دنت کتھائیں ہیں, ندی کے کنارے کیوں کھیلیں گے, کتنا سندر میدان ہوگا وہاں, ندی کنارے تو کوئی ڈوب بھی سکتا ہے نا. تو بابا کہتے ہیں شری کرشن جمنا کے کنٹھے پر کھیل پال کرتے ہیں, ایسی کوئی باتیں ہے نہیں. کیوں ستیوگ میں جمنا کے کنارے پر کھیل پال نہیں کرے گا شری کرشن, وہ تو راج کمار ہے, وہ تو ستیوگ کا پرنس ہے, بہت اچھی ریتی ان کی سنبھال کی جاتی ہے. اچھی ریتی سنبھال کی جاتی ہے کیونکہ پھول ہے نا, شری کرشن پھول ہے, اتنا چھوٹا بچہ, کتنا پیارا بچہ, اس کو ماں چھوڑ تھوڑی دے گی کہ جاؤ ندی کے کنارے کھیلو. وہ تو محل ہی ان کے اتنے بڑے ہوں گے وہاں, محلوں میں ہی وہ باغیچے اتنے سندر ہوں گے, وہاں کھیلیں گے کیونکہ وہ پھول ہے نا. پھول کتنے اچھے سندر ہوتے ہیں, پھول سے سب آ کر کے خوشبو لیتے ہیں, کانٹوں کی تھوڑی خوشبو لیں گے. اب کانٹوں سے کون خوشبو لے گا, خوشبو ملے گی بھی نہیں, کانٹوں کی تھوڑی خوشبو لیں گے. ابھی یہ ہے کانٹوں کی دنیا, کانٹوں کے جنگل کو باپ آ کر کے گارڈن آف فلاورز بناتے ہیں, اسی لیے شیو بابا کا کیا نام ہے, جو کانٹوں سے پھول بنائے اس کا نام کیا ہے, شیو بابا ہے. تو ان کا نام, دوسرا نام کون سا ہے جس کی پوجا ہوتی ہے, شیو کی پوجا کس روپ میں ہوتی ہے جو کانٹوں سے پھول بناتا ہے, ببول ناتھ. ہاں دیکھا ہے ببول ناتھ, بہت بامبے میں ببول ناتھ کا مندر, اتنی چھوٹی سکڑی ہوئی گلی ہے جہاں سے اس مندر میں جاتے, لیکن اس کا نام بہت فیمس ہے بامبے میں, ببول ناتھ. تو بابا کہتے ہیں تو اس کے لیے, اس لیے ان کا نام ببول ناتھ بھی رکھا گیا ہے. کانٹوں کو بیٹھ پھول بناتے ہیں, اسی لیے مہیما گاتے ہیں کانٹوں کو پھول بنانے والا بابا. اب تم بچوں کا باپ کے ساتھ کتنا لو ہونا چاہیے, وہ لوکک باپ, بابا کانٹراسٹ بتاتے ہیں, وہ لوکک باپ تو تم کو گٹر میں ڈالتے ہیں, شادی کرو شادی کرو شادی کرو, ہاں گٹر میں ڈالتے ہیں. اور یہ باپ کیا, باپ یہ باپ کیا کرتے ہیں, یہ باپ 21 جنموں کے لیے تم کو گٹر سے نکال پاون بناتے ہیں, وہ تم کو پتت بناتے ہیں. تب تو لوکک باپ, بابا کہتے ہیں تب تو لوکک باپ ہوتے ہوئے بھی پارلوکک باپ کو آتما یاد کرتی ہے. لوکک باپ سے زیادہ پارلوکک باپ کو آتما یاد کرتی ہے, ہاں کیونکہ وہ پاون بنانے والے ہیں. ابھی تم جانتے ہو آدھا کلپ باپ کو یاد کیا, باپ آتے بھی ضرور ہیں, یاد کیا تو آتے تو ضرور ہوں گے نا, آتے بھی ضرور ہیں. اور اس کا یادگار کیا ہے, شیو بابا آتے ہیں, اس کا یادگار کیا ہے, شیو جینتی, شیو جینتی مناتے ہیں نا. ابھی تم جانتے ہو ہم بے حد کے باپ کے بنے ہیں, اب ہمارا سمبندھ ان سے بھی ہے تو لوکک کے ساتھ بھی ہے. بابا یہ تو نہیں کہتے نا کہ لوکک سے ایک دم ناتا توڑ دو, بابا منع تو نہیں کرتے ہیں نا. کئی ہم لوگوں سے پوچھتے آپ لوگ اپنے لوکک گھر میں جاتے ہو, ہم کہتے کیوں نہیں جاتے ہیں, اس میں کیا, بابا نے منع تھوڑی کیا ہے کہ لوکک گھر میں جانا ہی نہیں ہے, بابا کے سمرپت ہو گئے تو, کہ تو بابا منع نہیں کرتے. لیکن بابا کہتے دیس ہے دیہ کے سب سمبندوں کو بھولو, باقی توڑ تو نبھانا ہوتا ہے, جاتے ہیں, کوئی مرن ہے, کوئی جنم, کوئی اور کوئی پرسنگ ہے, بلاتے ہیں تو کیوں نہیں جاتے ہیں. خاص کر کے جب لوکک ماتا پتا شریر چھوڑتے ہیں تو دادی جی خود کہتی تھی جاؤ, وہ کہتے تھے ابھی کوئی بات نہیں, اماں مرے تو بھی حلوہ کھاؤ, ابھی بھی مرے حلوہ کھاؤ, میں نہیں جاؤں گا. دادی کہتے تھے نہیں جاؤ, تمہارے پتا کی مرتیو ہوئی ہے, تمہاری لوکک ماں کی مرتیو ہوئی ہے, جاؤ گھر. دادی خاص بھیجتی تھی, سیوا کرنے بھی بھیجتی تھی, دادی جی بھیجتی تھی جاؤ گھر, جاؤ ماں کی سیوا کرو, اس کو کوئی نہیں ہے, تم کو تھوڑے دن جا کے سیوا کرنی ہے. تو بابا منع نہیں کرتے. تو بابا کہتے ہیں ابھی हाँ, तो बाबा कहते हैं बाबा आते भी जरूर हैं, शिव जयंती मनाते हैं ना, तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी हमारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है, पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वो हमारा लौकिक और पारलौकिक बाप है। आत्मा जानती है वो हमारा लौकिक बाप है, तो लौकिक को आत्मा जानती है, लौकिक है और वो हमारा पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी ये आत्मा जानती है कि वो लौकिक बाप है और वो परमात्मा पारलौकिक बाप है। तब तो कहते हैं ना, हे भगवान, ओ गॉड फादर, अविनाशी फादर को याद करते हैं, वो बाप आकर हेवन स्थापन करते हैं। ये किसको पता नहीं है, उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं, वो आकर के हेवन स्थापन करते, ये किसको पता नहीं, बस बुलाते हैं, समझते हैं उनसे हमें सुख मिलेगा। अब ये किसको पता नहीं है, शास्त्रों में तो युगों की आयु भी बहुत लंबी चौड़ी लिख दी है, ये किसके ख्याल में भी नहीं आता है कि बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। बाबा को आना पड़ता है पतितों को पावन बनाने, तो ऐसे समझते नहीं है, पर हाँ बुलाते जरूर हैं, तो जरूर संगम पर आएंगे। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है, धक्के खाते रहते हैं बाप को पाने के लिए। क्यों धक्के खाते हैं बाप को पाने के लिए? कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है। सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए। सबसे जास्ती भक्ति किसने की है? हाँ, किसने की है? हम बच्चों ने की है, तो इसलिए सबसे पहले भगवान हमसे मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है। सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले भगवान मिलना चाहिए। तो बाप ने हिसाब भी बताया है, क्या है इसका हिसाब? सबसे पहले भक्ति तुम करते हो, तो पहले भी तुम करते हो भक्ति और सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते हो, तो तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम नई दुनिया में राज्य करो। ज्ञान लेंगे, राजयोग सीखेंगे, फिर नई दुनिया में राज्य करेंगे, तो तुम ही ये करते हो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, अब इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, है कोई तकलीफ? इतना ऊंचा ज्ञान पर कितना सहज रूप से भगवान हमें देते हैं, इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं है, अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, बहुत बड़े आदमी बनते हो। कैसे बड़े आदमी बनते हो? हाँ, विश्व का मालिक, कितने बड़े आदमी बन जाते हो। देखो यहाँ इस कलयुगी दुनिया में भी देखो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते है ना? राजा का आप देखो, वो दुबई में जाएंगे या वहाँ यूएई, वहाँ जो शेख होते हैं उनके, इनके सब मिडिल ईस्ट कंट्रीज में क्या बड़े बड़े आलीशान उनके महल होते हैं। कलयुग में राजाओं के कितने बड़े बड़े महल है भारत में। तो देखो बाबा कहते हैं, देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं, फिर वहाँ सतयुग का कैसा होगा? वहाँ फिर गायें आदि सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा, क्या सुंदर महल होंगे, क्या सुंदर उनके जानवर होंगे। तुम तो कितने बड़े आदमी देवता बनते हो। हाँ, कितने बड़े आदमी? देवता बनना माना बहुत बड़े आदमी बनना। दैवी गुणों वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वहाँ तुम्हारे महल भी, अभी तो ये जो महल बनाते कलयुग में या द्वापुर में भी बनाए या जो भी बनाते, चलो वो तो ईंट पत्थर के होंगे, लेकिन सतयुग के महल कैसे होंगे? ईट पत्थर केवल, सोने के महल हीरे जा जड़ित हुए होंगे महल ना। तो बाबा कहते वहां वहां तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरातों के होंगे, वहां तुम्हारा फर्नीचर सोने के जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा, फर्नीचर भी सोना हीरे से जड़ित होंगे। श्री कृष्ण का झूला कैसे दिखाते हैं ना, वो झूला भी कितना हीरों से जड़ित होगा। तो बाबा कहते वहां तुम्हारा फर्नीचर सोने के जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा, यहाँ तो झूले आधे भी सब बेगरी है। रामानुसार देखो, ब्रह्मा बाबा जो झूले में झूलते, फोटो देखा होगा ना, वो खटाई, वो क्या चारपाई है, वो चारपाई को वो टांगे उनको रस्सी से बांधा हुआ, बाबा उस पर झूलते थे। यहाँ भी मधुबन में कई पूछते हैं को बाबा का क्या यही झूला, यहाँ बाबा झूलते थे? नहीं, यहाँ नहीं झूलते थे। वो आप देखेंगे ना, हिस्ट्री हॉल के सामने जो गली है, वो गली जहाँ पर ये क्या नाम है, रिजर्वेशन ऑफिस है आदि है, तो वहां पर झूला है, उसका लगा भी हुआ है वो झूले का, वहां बाबा झूलते थे। फोटो में भी देखा होगा, दादी जानकी बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, वो वहां का झूला है उस, तो उस समय उस वहीं पर बाबा का झूला था। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं रतन जड़ी झूले भी होंगे, यहाँ तो झूले आदि सब बेगरी है, वहां तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरातों की सब चीजें होगी। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं। इस रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। तो जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं, इस समय ही बाप या अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। गीता में रुद्र यज्ञ का वर्णन है, तो जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति सदैव तो चलती नहीं रहेगी, ऐसे नहीं शुरू से कोई भक्ति चली आई है, सदैव तो नहीं चलती रहेगी भक्ति। भक्ति फिर ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। तो बाप आकर दिन बनाते हैं, तो बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, मोस्ट बिलविड बाबा है, उनसे ज्यादा प्यारी वस्तु कोई हो न सके। तो स्वीटेस्ट कौन है? मोस्ट बिलविड बाबा, जिनसे प्यारी कोई चीज हो नहीं सकती। आधा कल्प से याद करते आए हो, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाप आए हैं, समझाते हैं तुमको अपने ग्रस्त व्यवहार में तो रहना ही है, यहाँ बाबा पास कहाँ तक बैठेंगे। अब बाबा कहते हैं देखो, कई कहते हैं ना हम बस आसपास ही आकर के मकान ले, कितने आकर कहते हैं यहाँ आसपास कोई माउंट आबू में मकान नहीं मिलेगा, या तो नीचे मकान नहीं मिलेगा। हम कहते हैं भाई हमें क्या पता, आप जाके ढूंढो, हमें तो पता नहीं। लेकिन यहाँ नजदीक में बाबा के हम मकान ले, बहुत ढूंढते हैं, बहुत बनाते हैं। अब बाबा कहते हैं यहाँ सब तो रह नहीं सकते। बाबा ने ये जरूर मुरली में कहा था, एक दिन वो आएगा सारा आबू आपका हो जाएगा। वो तो देख रहे हैं बहुत मकान लेते जाते हैं, नीचे भी तो पूरा भरपूर हो रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं सब बच्चे तो एक साथ रह नहीं सकते, यहाँ कि सारे आकर के बाबा के बच्चे आबू में ही रहे, पर सब एक साथ कहाँ रहेंगे? कहाँ? परम धाम में। परम धाम में तो सब आत्मा एक साथ ही रहेंगी ना, पर पता होगा एक दो का, कुछ पता नहीं होगा, पर रहेंगे सब एक साथ। तो बाबा कहते हैं बाप के साथ तो परम धाम में ही रह सकते एक साथ, यहाँ इतने सब बच्चे तो नहीं रह सकते। अभी फिर क्लास में भी देखो, बाबा के समय कोई माइक्रोफोन नहीं होता था, हिस्ट्री हॉल में बाबा के सामने माइक्रोफोन ही होता था। बाबा को माइक्रोफोन पसंद नहीं था, अगर देते भी थे ना तो बाबा कहते थे हटाओ ये क्या बीच में, बाबा बच्चों से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। हमारी दादी जानकी भी ऐसे थी, दादी जानकी कहते हिस्ट्री हॉल में मैं सबसे मिलूंगी, तो मिलूंगी तो फिर जैसे बैठते दूर दूर सबके नजीक आओ नजीक आओ नजीक आओ, वहां सबको इतना आगे बिठा करके दादी मिलती थी। डबल विदेशी है तो बहुत अनुभव ही है इसके, हाँ नजदीक आओ नजदीक आओ। तो बाबा को भी माइक पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, तो बाबा कहते हैं बाप हाँ यहाँ इतने सब बच्चे तो रह नहीं सकते, अब टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, अब इतने सारे एक साथ रहेंगे तो सवाल पूछे टीचर तो फिर कैसे जवाब भी देंगे, टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रेस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे, इसीलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। स्कूलों में तो आजकल पता नहीं लाउड स्पीकर है या नहीं है, स्कूलों में स्कूल में तो नहीं होता ना लाउड स्पीकर, छोटे छोटे क्लासरूम होते हैं। तो बाबा कहते हैं लाउड स्पीकर पर रेस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे, इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते हैं, लिस्ट निकलती है, यहाँ तो एक ही बाप पढ़ाते हैं। ये भी समझाना चाहिए दुख में सिमरन सब उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। अब ये बाप आया हुआ है, महाभारी महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, वो समझते हैं महाभारत लड़ाई में श्री कृष्ण आया। अब ये तो हो न सके कि महाभारत लड़ाई में श्री कृष्ण आया, बिचारे मूंझे हुए हैं। फिर कृष्ण कृष्ण याद करते रहते हैं, अब मोस्ट बिलवेड शिव बाबा भी है तो श्री कृष्ण भी है, दोनों ही मोस्ट बिलवेड है। वो है निराकार में मोस्ट बिलवेड कौन, शिव बाबा, और वो है साकार में मोस्ट बिलवेड कौन, श्री कृष्ण। इसलिए निराकार और साकार में अंतर है उस हिसाब से, परंतु मोस्ट बिलवेड दोनों हैं। तो वो है निराकार में मोस्ट बिलवेड, वो साकार में। निराकार बाप सब आत्माओं का बाप है दोनों मोस्ट बिलवेड। श्री कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना, अभी तुम जज कर सकते हो जास्ती प्यारा कौन। चलो अगर इन दोनों के बीच में भी भेंट करे, शिव बाबा और श्री कृष्ण के भी बीच में, दोनों मोस्ट बिलवेड है, पर दोनों में से फिर भी भेंट करे तो किसको मोस्ट बिलवेड कहेंगे, शिव बाबा को। तो बाबा कहते अभी तुम जज कर सकते हो जास्ती प्यारा कौन, शिव बाबा ही तो ऐसा लायक बनाते हैं ना। श्री कृष्ण भले मोस्ट बिलवेड है लेकिन उनको बनाने वाला तो उनसे ऊंचा हो गया ना, तो शिव बाबा ही तो ऐसा लायक बनाते हैं ना। श्री कृष्ण क्या करते हैं, वो तो खाली खेल पाली करता है, चलो राजा बन गया श्री नारायण बन गया राजा ही करेगा। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण क्या करते हैं, बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं ना, तो गोया तो बाप ही उनको ऐसा बनाते हैं, तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए जो बनाने वाला है ऐसा। हमेशा जब भी कोई बहुत सुंदर चीज हम देखते ना, फिर क्या कहेंगे इसको बनाने वाला कौन, तो बनाने वाला पहले याद आता है, वो चीज तो अच्छी लगती है पर बनाने वाला कौन। तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए। फिर शंकर का डांस दिखाते हैं, वास्तव में डांस आदि की तो बात ही नहीं है, शंकर का देते तांडव नृत्य बताते हैं, वो अंतिम नृत्य जो शंकर बजाएंगे विनाश, तो ये विनाश का तांडव नृत्य होता है। तो फिर बाबा कहते हैं वास्तव में कोई डांस आदि की बात नहीं है, शंकर ने ऐसा कोई तांडव नृत्य किया। तो बाबा कहते हैं शंकर का डांस दिखाते वास्तव में डांस की बात नहीं है, बाप ने समझाया है शंकर की भी बात नहीं है शिव बाबा का। परंतु कौन सी डांस करते हैं शिव बाबा, ज्ञान डांस तो करते हैं ना। तो देखो बाबा कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो, बाप ने समझाया है तुम सब पार्वतियां हो, ये शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं, वो है वॉइसलेस वर्ल्ड, विकार की बात ही नहीं है। बाप विकारी दुनिया थोड़ी रचेंगे, विकार में तो दुख है। अब भगवान दुख थोड़ी रचेंगे, भगवान तो सुख रचेंगे ना, तो विकारी दुनिया थोड़ी रचेंगे, विकार में ही दुख है। मनुष्य हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीजों को निकालते हैं। जादूगर होते ना, क्या से क्या निकालते। बाबा कहते, कई कहते आपके पास कोई चमत्कार तो आप लोग दिखाओ, और बाबा क्या कहते, चमत्कार को नमस्कार नहीं है। ज्ञान मार्ग में चमत्कार को नमस्कार नहीं है, वहां तो चमत्कार से आकर्षित करते, यहाँ तो पुरुषार्थ है। परंतु कौन सा चमत्कार दिखाते हैं बाबा? बाबा कहते कांटे को फूल बना देना। अब क्या हम कांटे थे और बाबा ने हम बच्चों को फूल बना दिया, तो ये चमत्कार है ना, कोई वो चमत्कार थोड़ी बनाएंगे कि दुखी और दुनिया में जब दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीजों को निकालते हैं, पर भगवान को भी जादूगर रत्नागर सौदागर कहते हैं, तो जरूर चैतन्य है ना भगवान, जो जादूगर भी है, रत्नागर भी है, सौदागर भी है, तो जरूर चैतन्य है ना। कहते भी हैं मैं आता हूँ, जादूगर है ना। क्या जादूगरी बाबा दिखाते हैं? मनुष्य को देवता और बेगर से प्रिंस बनाते हैं, कंगाल से एकदम सिरताज बना देते हैं। ऐसा जादू कभी देखा? जो भगवान के सिवाय कोई नहीं दिखा सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, फूलों के बगीचे में चलना है इसलिए खुशबूदार फूल बनना है। फूलों के बगीचे में चलना है इसलिए खुशबूदार फूल बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। दूसरा, शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है। सुखदाता बाप को याद करना है। शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है। सुखदाता बाप को याद करना है। वरदान, किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता वो है, कौन है मास्टर दाता? मास्टर दाता वो है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए। किसी की भी कमी कमजोरी को न देख वे अपने धारण किए हुए गुणों का शक्तियों का सहयोग देते हैं। ये ऐसा है ही ऐसे कहते थे कईयों के, ये तो ऐसा है ही है, इसको छोड़ो ये तो कभी नहीं सुधरेगा। तो बाबा कहते ये ऐसा है ही, इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, ये शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि ये सर्व आत्माएं कंगाल दुखी अशांत से सदा शांत सुखमय सुख रूप माला माल बन जाए, ऐसी भावना हो, तब कहेंगे मास्टर दाता। स्लोगन, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी। केवल कर्मणा सेवा वाले ही नहीं, निरंतर सेवादारी मनसा वाचा कर्मणा, हाँ तीनों प्रकार की सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी, उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। कर्मणा सेवा तो चलो थोड़ी करेंगे, वाचा भी थोड़ी करेंगे, पर मनसा तो हर वक्त कर सकते हैं ना, इसलिए तीनों प्रकार की सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी, उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। अव्यक्ति शारे इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत पहले अपनी देह से, देह के संबंध से और पुरानी दुनिया की स्मृति से मुक्त बनो। जीवन मुक्त बनना माना पहले अपनी देह से, देह के संबंध से और पुरानी दुनिया की स्मृति से मुक्त बनो। जब इस मुक्ति की अवस्था का अनुभव करेंगे तब मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव स्वतः होगा। तो चेक करो जीवन में रहते हुए देह के संबंध और पुरानी दुनिया की आकर्षण से कहाँ तक मुक्त बने हैं, ये चेकिंग आज करना। हाँ देह के संबंध और पुरानी देह की आकर्षण से कहाँ तक मुक्त बने हैं। अच्छा ओम शांति ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे, डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे, आपको आज का प्रोग्राम देंगे। डबल फॉरेनर्स प्लीज स्टे बैक, यू विल गेट बाबा टुडेज प्रोग्राम। और जो भी पार्टियों में आए